चौथा स्वर्ण भूमि के मार्ग, भारत से स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप जाने आने के लिए भारत की नाविक प्रधानतया तीन मार्गों का प्रयोग किया करते थे। उत्तरी भारत के व्यापारी गंगा के मार्ग से पहले ताम्रलिप्त पहुंचते थे, जो गंगा नदी के मुहाने पर बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति से वे अंडमान द्वीप के उत्तर से होते हुए या अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में से होते हुए मलाया प्रायद्वीप पहुंचते थे, जहां कई के जल डमरू मध्य के समीपवर्ती प्रदेश में अनेक बंदरगाहों की सत्ता थी। दूसरा मार्ग भारत के पूर्वी समुद्र तट के बंदरगाहों से प्रारंभ होता था। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर मुख्य बंदरगाह दंतपुर, चिन्न गंजाम और कावेरी पट्टम थे। इनसे प्रस्थान करने वाले जहाज बंगाल की खाड़ी को पार कर सीधे मलाया द्वीप प्रायद्वीप चले जाते थे। तीसरा मार्ग लंका सिंघल द्वीप से प्रारंभ होता था और निकोबार द्वीप के दक्षिण से होता हुआ मलाया पहुंचता था। मलाया प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों तथा द्वीपों को जाने के लिए भी अनेक मार्गों का प्रयोग किया जाता था। मलाया के दक्षिण में सिंगापुर है, जिसे मलक्का का जल डमरू मध्य सुमात्रा से पृथक करता है। भारत के जहाजों के सामने तीन विकल्प हुआ करते थे। पहला, वे सुमात्रा द्वीप के दक्षिण से होकर पूर्व में स्थित चंपा, काम्बुज आदि उन प्रदेशों में जाए जहां वर्तमान समय में कंबोडिया और वियतनाम है। यह मार्ग बहुत लंबा पड़ता था और महासमुद्र के तूफान के कारण यह निरापद भी नहीं था। दूसरा, मलक्का के जल डमरू मध्य से होकर पूर्वी देशों को जाया जा सकता था। यह छोटा मार्ग छोटा तो पड़ता था, पर क्योंकि यह अधिक चौड़ा नहीं है, अतः इससे यात्रा करने पर जलदस्युओं का भय बना रहता था। मलक्का के जल डमरू मध्य से उत्तर तथा दक्षिण में जलदस्युओं के बहुत से अड्डे थे और उनके आक्रमणों तथा उनके द्वारा व्यापारिक माल के लूटपाट के लिए जाने की संभावना से व्यापारी लोग सदा आशंकित रहते थे। तीसरा विकल्प यह था कि क्रा के स्थल डमरू मध्य के समीप बंगाल के खाड़ी के पूर्वी तट पर जो अनेक बंदरगाह विद्यमान थे, उन पर व्यापारिक माल को उतार दिया जाए और वहां से उसे स्थल मार्गों द्वारा सियाम की खाड़ी के बंदरगाहों पर पहुंचा दिया जाए। मलाया प्रायद्वीप की लंबाई चौड़ाई से बहुत अधिक है और उसमें का स्थल डमरू मध्य तो चौड़ाई में बहुत ही कम है। स्थल के मार्ग से उस पार कर सकना कठिन नहीं है। महासमुद्र के तूफानों तथा मलक्का के जल डमरू मध्य के जलदस्युओं के संकट से बचने के लिए भारत के व्यापारी इस स्थल मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे और इनका उपयोग किया करते थे। कहा कि स्थल डमरू मध्य के पश्चिमी तट, बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट पर तकुआ, पातरंग और केडाह के बंदरगाह थे, जहां भारत से आने वाले जहाजों का माल उतार लिया जाता था। वहां से उसे खुशी के रास्तों से पूर्व की ओर ले जाया जाता था और क्रा के स्थल डमरू मध्य के पूर्वी तट, सियाराम की खाड़ी के पश्चिमी तट पर विद्यमान चैया, पत्नी और लिगोर के बंदरगाहों पर पहुंचाया जाता था। वहां उन्हें फिर जहाजों पर लाद देते थे और जल मार्ग द्वारा चंपा, कंबोज तथा चीन आदि पूर्वी देशों में ले जाते थे। इन विविध मार्गों के साथ साथ अनेक बंदरगाह उस समय विकसित हो गए थे, जिनमें धन उपार्जन के बहुत अवसर थे। ताम्रलिप्त से जो जहाज वर्मा जाते थे, उन्हें महासमुद्र के तूफानों का अधिक भय नहीं रहता था, क्योंकि उनका मार्ग प्राय समुद्र तट के साथ साथ होता था। इरावर्दी नदी के मुहाने के समीप स्थित बंदरगाह पर इन जहाजों का पण्य उतार दिया जाता था और वहां से उसे स्थल मार्गों द्वारा बर्मा के विविध प्रदेशों, सियाम, चंपा और काम्बुज तक ले जाया जाता था। भारत के पूर्वी प्रदेशों को जाने के लिए ऐसे मार्ग भी थे जिनमें समुद्र यात्रा की आवश्यकता नहीं होती थी। एक स्थल मार्ग असम, कामरूप से उत्तर बर्मा जाता था और वहां से इरावदी, सालवीन तथा मेकांग नदियों की घाटियों से होता हुआ दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत तक चला जाता था। इस प्रांत के दक्षिणी भाग में भी भारतीयों ने एक उपनिवेश की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने गांधार रखा था। पांचवा, भारतीय उपनिवेशों का प्रारंभ। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध देशों तथा द्वीपों के साथ भारत का संबंध व्यापार के प्रायोजन से प्रारंभ हुआ था। व्यापार द्वारा धन कमाने के प्रयोजन से ही भारत के व्यापारी इस क्षेत्र के प्रदेशों में जाया आया करते थे। बाद में धर्म प्रचार तथा उपनिवेशों की स्थापना के लिए भी भारतीय लोग वहां जाने लगे, पर इसमें संदेह नहीं कि बौद्ध, मौर्य तथा शुंग युगों में भारत और इन देशों के संबंध का प्रधान कारण व्यापार ही था। जातक कथाओं और कथा सरित सागर सदृश कथा साहित्य में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा के विषय में जो भी कथाएं दी गई हैं, उन सब में यात्रियों और नाविकों का यही उद्देश्य था कि इन देशों में भारतीय पण्य को बेचकर और वहां के पण्य व सोने चांदी को भारत लाकर धन कमाया जाए। इन कथाओं के व्यापारियों तथा नाविकों को न तूफान से जहाज के नष्ट हो जाने की चिंता थी, न मार्ग के दस्युओं से लूटे जाने की, और न किसी अज्ञात द्वीप में पहुंच जाने पर विकट परिस्थिति का सामना करने की। जहाज द्वारा समुद्र तट पर पहुंचकर वे ऐसे प्रदेशों में भी अपने पन्ने ले जाते थे जहां कोई सड़कें नहीं थी। वृक्षों की जड़ें और लता बल्लरियों के सहारे विषम भूमि पर वे आगे बढ़ते थे और भेड़ बकरियों द्वारा बनाई गई पगडंडियों से चलकर अपने लक्ष्य पर पहुंचते थे। धन की लालसा में ये व्यापारी कैसे कैसे कष्ट काटते थे, इसका भी प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किया गया है। पर इनके लिए धन का आकर्षण इतना अधिक था कि ये यात्रा के कष्टों की जरा भी परवाह नहीं करते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों से उन्हें इतना बहुमूल्य पन्ने व सोना चांदी आदि प्राप्त हो जाते थे कि इनके नाम ही स्वर्णद्वीप, रुप्यद्वीप, ताम्रद्वीप, यवद्वीप, शंखद्वीप, कर्पूरद्वीप और नारिकेलद्वीप आदि रख दिए गए थे। इन नामों से ही यह सूचित हो जाता है कि इन प्रदेशों से उन्हें किस प्रकार के पन्ने की प्राप्ति हुआ करती थी। धन के लिए सुदूर प्रदेशों की यात्रा करने वाले ये प्राचीन भारतीय व्यापारी कोलंबस और वास्को डी गामा सदृश मध्यकालीन यूरोपीय यात्रियों के समान ही साहसी थे। जिन भारतीयों ने पहले पहल दक्षिण पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों को पता किया और उनके निवासियों के साथ व्यापार प्रारंभ किया, यदि उनकी यात्रा विवरण इस समय उपलब्ध हो सके तो वे कोलंबस आदि की यात्रा वृत्तांतों से किसी भी प्रकार महत्व में कम न होंगे। व्यापारियों का अनुसरण कर भारत के धर्म प्रचारकों ने भी इन प्रदेशों में जाना प्रारंभ किया। राजा अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त मोदगली पुत्र दिश के नेतृत्व में विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो आयोजन किया गया था, उसमें सोण और उत्तर नाम के स्थविरों को स्वर्ण भूमि भेजा गया था। वहां के राजा के कोई संतान जीवित नहीं थी क्योंकि उसके समीपवर्ती समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो राजा की संतान को जन्म लेते ही खा जाती थी। सोण और उत्तर के उस राक्षसी की शक्ति का नाश किया जिससे राजा की संतान की अकाल मृत्यु का भय दूर हुआ। संभवतः महावंश की इस कथा द्वारा यह संकेत मिलता है कि धन प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि जाने वाले स्थवीर चिकित्सा में भी प्रवीण थे और उन्होंने रोग रूपी राक्षसी का संहार किया, राजा की संतान की प्राण रक्षा की थी। कंबोडिया का फूनान राज कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित किया गया था जो शायद वहां धर्म प्रचार के लिए ही गया था। चंपा के एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार उरोज नामक ऋषि को शिव ने चंपा का राजा बनाकर भेजा था। जब ये ऋषि स्थवीर व धर्म प्रचारक दक्षिण पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों में जाने लगे तो उनका संपर्क वहां के निवासियों के साथ हुआ जो सभ्यता के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। भारतीय प्रचारकों से उन्होंने न केवल धर्म की शिक्षा ग्रहण की अपितु सभ्यता का पाठ भी पढ़ा। ये प्रचारक वहीं पर बस गए और वहां की स्त्रियों से उन्होंने विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए। इस प्रकार अनेक ऐसे उपनिवेशों का सूत्रपात हुआ जिनके निवासी संकर जातियों के थे पर जिन्होंने भारतीयों की संस्कृति तथा धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में बहुत से भारतीय उपनिवेश क्षत्रिय राजवंशों के कुमारों द्वारा भी स्थापित किए गए थे। ये कुमार अपने राज्य व मातृभूमि को सदा के लिए नमस्कार कर अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों में आ बसे थे। कंबोडिया, वियतनाम, मलाया, बर्मा आदि के कितने ही प्राचीन भारतीय उपनिवेशों में यह अनुसूचि विद्यमान थी कि उन राजवंशों का प्रारंभ भारत के राजकुमारों द्वारा किया गया था। इन अनुसूचियों का उल्लेख अगले अध्यायों में यथास्थान किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाण, शक आदि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण जब भारत के अनेक प्राचीन राज्यों की स्वतंत्रता का लोप हो गया तो उनके राजवंशों के अनेक साहसी राजकुमारों ने इन सुदूर प्रदेशों में जाकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। भारत के इतिहास में यह परंपरा कोई नई नहीं थी। मगध राज जरासंध के आक्रमणों के कारण अंध कृष्ण गण के लोग कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका में जा बसे थे और यवनों से आक्रांत होकर पंजाब के मालव तथा शिव गणों ने राजस्थान की मरुभूमि में प्रवास किया था। कुछ इसी ढंग की प्रक्रिया भारत के मध्य प्रदेश के उन राज्यों तथा राजवंशों के साथ भी हुई जिन्होंने कुषाणों तथा शकों द्वारा आक्रांत किए जाने पर समुद्र के पार इन प्रदेशों में प्रवास किया और वहां नए उपनिवेशों व राज्यों की स्थापना की। छठा, स्वर्ण भूमि के पुराने निवासी और भारत के साथ उनका संबंध। दक्षिण पूर्वी एशिया के जिन प्रदेशों व द्वीपों में भारतीयों ने अपने उपनिवेश बसाए थे वे सर्वथा गैर आबाद नहीं थे। वहां अनेक जातियों का निवास था। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से जो विविध स्तरों पर थी, कतिपय जातियां ऐसी थीं जो पुरातन प्रस्तर युग के स्तर पर थीं और सभ्यता में बहुत पिछड़ी हुई थी। उनके वंशज वर्तमान समय में सुदूर जंगलों तथा पर्वतों की उपत्यकाओं में निवास करते थे और शिकार द्वारा निर्वाह करते हैं। खेतों का उन्हें परिज्ञान नहीं है। वहाँ ऐसी जातियों का भी निवास था जो शिकारी दशा से ऊपर उठकर पशुपालक दशा पर पहुँच चुकी थी और जिन्होंने खेती को भी प्रारंभ कर दिया था। पर दक्षिण पूर्वी एशिया की बहुसंख्यक जातियाँ अधिक उन्नत दशा में थीं और उन्होंने खेती के साथ साथ कतिपय उद्योगों व व्यवसायों का भी विकास किया था। प्राचीन भारत के कथा साहित्यों धन की लालसा में स्वर्ण भूमि जाने वाले जिन नाविकों व व्यापारियों का उल्लेख है, दक्षिण पूर्वी एशिया के इन्हीं निवासियों के साथ उनका व्यापार संबंध था और उन्हीं को भारत का पर्णे बेचकर वे धन कमाया करते थे। सभ्यता की दृष्टि से उपेक्षा अधिक समुन्नत इन जातियों को स्थूल रूप से मलय या मलाय संज्ञा दी गई है। मलाय प्रायद्वीप सुमात्रा बोर्नियो जावा मथुरा बाली सेलेबस आदि के बहुसंख्यक निवासी इसी जाति के हैं और भारत के लोग जब इन प्रदेशों में उपनिवेश बसाने के लिए गए तो वहाँ इसी जाति का निवास था। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय लोग मलय लोगों की तुलना में अधिक उन्नत थे, अतः भारतीयों ने उनके प्रदेशों में न केवल अपने राज ही स्थापित किए अपितु अपने धर्म भाषा तथा संस्कृति का भी वहां प्रसार किया और सांस्कृतिक दृष्टि से मलय लोगों अपने रंग में रंग लिया। बर्मा से वियतनाम और उससे भी परे फिलीपीन तक फैली हुई मलय जातियों की भाषाओं का अध्ययन कर अनेक विद्वान इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इन भाषाओं का भारत की मुंडारी संथाली व खासी भाषाओं के साथ संबंध है और ये उसी भाषा परिवार की हैं जिसकी भारत की मुंडारी आदि भाषाएं हैं, क्योंकि भाषा और नस्ल में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अतः यह मानना भी असंगत नहीं होगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया की मलय जातियाँ और भारत की मुंडा व संथाल जातियाँ नस्ल की दृष्टि से एक ही परिवार की हैं। इस मत का प्रतिपादन सबसे पूर्व जर्मन विद्वान स्मेडट ने किया था और भारत की मुंडारी आदि भाषाओं तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की मलय भाषाओं में आधारभूत एकता की पहचान करने के अनंतर उन्होंने यह मंतव्य प्रस्तुत किया था कि मलय लोगों का आदि निवास स्थान भारत में था और वहां से धीरे धीरे पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर उनका प्रसार हुआ था। पहली और दूसरी सदियों में उन उपनिवेशों की स्थापना के लिए भारतीयों का जिस ढंग का प्रवाह पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशाओं की ओर से प्रारंभ हुआ था, वैसा ही एक प्रवाह किसी अज्ञात प्राचीन काल में भारत में निवास करने वाले मुंडा संथाली आदि जातियों का भी उन्हीं दशाओं में हो चुका था। दक्षिण पूर्वी एशिया के विशाल क्षेत्र में जो मलय जातियां निवास करती हैं उनके पूर्वज भारत से ही वहां जाकर बसे थे। स्मिडट कि इस मंतव्य का समर्थन अन्य भी अनेक विद्वानों द्वारा किया गया, जिनमें सिल्वा, लेवी, प्रज्यूलुस्की और ज्यूल ब्लाक के नाम उल्लेखनीय है। इन फ्रेंच विद्वानों ने स्मिडट का मत का समर्थन करते हुए यह प्रतिपादित किया कि द्रविड़ और आर्य जातियों के प्रवेश से पूर्व मुंडा, संथाल, खासी आदि जो जातियां भारत में निवास करती थी, वे न केवल दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों में ही फैली थी, अपितु दक्षिण पश्चिम में वे मेडागास्कर तक भी गईं। इन जातियों ने भारतीय आर्यों की भाषाओं, पूजा विधि तथा धार्मिक विश्वासों को प्रभावित किया, पर क्योंकि द्रविड़ और आर्यों के आक्रमण के कारण इसके लिए भारत में अपने पुराने प्रदेशों में निश्चित रूप में बसे रह सकना सुगम नहीं रहा था, अतः ये अन्य देशों में जाकर जाने के लिए विवश हुई और इन्होंने बर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा, मेडागास्कर आदि को आबाद किया। जिन युक्तियों को प्रस्तुत कर स्मिडट, सिल्वा, लेवी आदि विद्वानों ने इस मंतव्य को प्रतिपादित किया है, उनका उल्लेख यहाँ कर सकना संभव नहीं है और न उसका विशेष उपयोग ही है। यह इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त है कि इन विद्वानों की युक्ति परंपरा का आधार यह साम है जो दक्षिण पूर्वी एशिया की मलय भाषाएं तथा भारत की मुंडारी, खासी आदि भाषाओं में पाया जाता है, और साथ ही उन पूजा विधियों, धार्मिक विश्वासों तथा पुरातन कथाओं की सत्ता है जो भारत तथा स्वर्ण भूमि में प्रायशः सदृश रूप में पाई जाती है। स्मिडट ने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया की मलय भाषाओं को औस्ट्रिक संज्ञा प्रदान की थी और मुंडारी, खासी आदि भारतीय भाषाओं से औस्ट्रिक भाषा की समता प्रदर्शित की थी। सिल्वा, लेवी और प्रज्यूलुस्की ने प्रतिपादित किया कि इस औस्ट्रिक भाषा का प्रभाव भारतीय आर्यों की संस्कृति आदि भाषाओं पर भी पड़ा और संस्कृति से कितने ही शब्द मुंडारी, खासी जो औस्ट्रिक या मलय भाषा के परिवार की थी आदि पुरानी भाषाओं से लिए गए हैं। साथ ही भारत में अनेक प्रदेशों के नाम शब्दों के द्वंद्वों में प्रयुक्त होते रहे हैं, जैसे अंग, बंग, कलिंग, त्रिलिंग, कोशल, तोसल, उत्कल, मेकल और पुलिंद, कुलिंद। संज्ञावाचक शब्दों को इस प्रकार द्वंद्व में प्रयुक्त करने की परंपरा औस्ट्रिक भाषाओं में पाई जाती हैं और संस्कृत में इसे वहीं से लिया गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में नागी और मत्स्य गंधा के विषय में जो कथाएं आती हैं, उनसे मिलती जुलती कथाएं दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। इससे भी यह परिणाम निकाला गया है कि इन कथाओं का मूल स्रोत एक ही है। संस्कृत साहित्य में इनका प्रवेश जिन जातियों के साथ संपर्क के कारण हुआ, वही जातियां इन्हें भारत से दूर दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ले गईं। ये कथाएं ऐसे प्रदेशों में ही विकसित हो सकती थी जिनकी स्थिति समुद्र के समीप हो। उत्तर पश्चिम की ओर से आए हुए द्रविड़ों और आर्यों में इनका विकास संभव नहीं था, क्योंकि इनका संबंध जल व सागर के साथ है। भारत की प्राचीन आर्य तथा द्रविड़ सभ्यताओं में अनेक तत्व ऐसे हैं जो उनमें पूर्ववर्ती मुंडा, संथाल आदि जातियों से आए हैं। धर्म के क्षेत्र में एक ऐसा तत्व योनि और लिंग की पूजा का है। पौराणिक हिंदू धर्म में योनि और लिंग की पूजा को स्थान प्राप्त है, पर दक्षिण पूर्वी एशिया के पुराने निवासियों में भी यह प्रचलित थी, जिसे उन्होंने उसी स्रोत में ग्रहण किया था जिससे कि भारतीय आर्यों से उसे प्राप्त किया था। यह स्रोत मुंडा व खासी सदृश जातियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता था। कतिपय विद्वानों का यह भी मत है कि अत्यंत प्राचीन काल में कभी स्वर्ण भूमि या दक्षिण पूर्वी एशिया के लोग ने पश्चिम की ओर अपना प्रसार करते हुए भारत में भी प्रवेश किया था और भारत की प्राचीन भाषा, कथाओं तथा धर्म के कतिपय तत्वों में दक्षिण पूर्वी एशिया की भाषा आदि से जो सादृश्य है, उसका यही कारण है। इस मत के प्रतिपादकों में क्रोम और हार्नेल मुख्य हैं। इन विद्वानों का मत स्मिडट तथा सिल्वा, लेवी आदि के मंतव्य से पूर्णतया विपरीत है, पर बहुसंख्यक विद्वान यही मानते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में भी एक बार भारत में निवास करने वाली कतिपय जातियों के लोगों ने पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवास किया था और वहां जाकर अपनी बस्तियां बसाई थी। स्वर्ण भूमि में जाकर बसने वाले ये लोग मलय या मलय जाति के थे और वहाँ के निवासी वर्तमान समय भी मुख्यतः इसी जाति के थे। उनसे पहले जो लोग वहाँ बसते थे उनके वंशज बहुत कम संख्या में हैं और वे प्रायः सघन जंगलों में निवास करते हैं। जो मलय या मलय जाति दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न प्रदेशों और द्वीपों में जाकर आबाद हुई वह पहले भारत में निवास करती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य में मालव, मालय तथा मलय इन तीनों रूपों में इसका उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मालव को आयुधजीवी संघों में परिगणित किया गया है। महाभारत में मालवों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है और उनकी स्थिति उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण तीनों दिशाओं में बताई गई है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो मालव ग्रीक मल्लोई गण से भी उसका युद्ध हुआ था। मालव गण पंजाब में था। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से भी मालव गण के बहुत से सिक्के उपलब्ध हुए हैं जो मौर्य युग के बाद के हैं। रामायण तथा मत्स्य पुराण में भी मालवों का उल्लेख है और उनका निवास पूर्वी प्रदेशों में कहा गया है। प्राचीन साहित्य में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर मालवों का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्राचीन काल में भारत में मालव एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनजाति या कबीला था और उसकी शाखाएं इस देश में दूर दूर तक फैली हुई थी। यद्यपि इस जन के लिए प्राचीन साहित्य में प्रायः मालव शब्द का प्रयोग किया गया है पर मालय शब्द भी कहीं कहीं मिलता है। नासिक से प्राप्त हुए एक शिलालेख में मालय शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने समय में कतिपय शब्दों में य व दोनों अक्षर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुआ करते थे। यह बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि प्रसिद्ध शातवाहन वंशी राजा पुलुमाई के लिए अनेक शिलालेखों में पुलुमावी भी प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार मालय के मालव का प्रयोग किया जाना भी असंगत नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः मालव, मालय और मलय एक ही जाति थी जो अत्यंत प्राचीन काल में भारत के बहुत से प्रदेशों में बसी हुई थी और फिर भारत से बाहर अन्यत्र भी फैल गई। भारत में कितने ही ऐसे प्रदेश व स्थान हैं जो इस जाति के नाम पर हैं। पंजाब का एक प्रदेश मांझा मालवा कहलाता है। एक मालवा मध्य प्रदेश में है और सुदूर दक्षिण में मालाबार या मलयबार है। पुराणों में जो सात कुल पर्वत गिनाए गए हैं उनमें एक मलय पर्वत भी है। महावंश और टालमी के भूगोल के अनुसार लंका में भी एक मलय पर्वत था। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु में भी एक मलय देश की सत्ता के संकेत प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध आचार्य वज्रबोधि 716 ईस्वी में धर्म प्रचार के लिए चीन गया था। उसका पिता कांची के राजा का गुरु था और वे मलय देश के निवासी थे। अलबरूनी के अनुसार मलय देश कांची के 160 मील दक्षिण में था। मालय या मालव जाति के लोगों ने भारत में जाकर जहां जहां अपनी बस्तियां बसाईं अपने जातीय नाम के चिन्ह भी वे वहां वहां लगाते गए। यही कारण है जो दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अन्यत्र कितने ही ऐसे स्थान हैं जिनके साथ इस जाति का नाम किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। मलाया प्रायद्वीप का मलाया नाम स्पष्टतया इसी जाति के साथ संबंध है। सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच में मलक्का का जल डमरू मध्य है। इस मलक्का का भी मालय से संबंध है। सुमात्रा में एक नदी मलायु है और वहाँ का एक पर्वत भी इसी नाम का है। वहाँ के पांच गांव भी मलायु नाम के हैं और वहाँ के निवास करने वाली एक जाति भी मलायु कहती है। लाओस का एक पुराना नाम माला या मालव भी है और दक्षिण पूर्वी एशिया के हजारों द्वीपों में एक मलक्का भी है। मालदीव, मालदीव भी संभवतः मालव जाति से संबंध है और अफ्रीका के पूर्व में स्थित मागलसी मेडागास्कर द्वीप के नाम पर भी मालव का प्रभाव प्रतीत होता है। मागलसी और मालव का संबंध इस बात से भी सूचित होता है कि इंडोनेशिया की मलय भाषा का एक ऐसा रूप इस द्वीप में प्रचलित रहा है जिसमें संस्कृत के शब्दों का भी मिश्रण था। अनेक विद्वानों ने इससे यह परिणाम निकाला कि भारत की मालव या मालय जाति के दक्षिण पूर्वी एशिया के समान हिंद महासागर के मालदीव और मागलसी द्वीपों में भी प्रवास किया था और वहां से अपनी बस्तियां बसाई थी। जिस मालव या मालय जाति ने भारत से बाहर जाकर सुदूर प्रदेशों में प्रवास किया था वह आर्य द्रविड़ न होकर एक अन्य जातियां वर्ग की थी और उसका संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया की औष्ट्रिक जाति से था। यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि मालवों के जो बहुत से सिक्के जयपुर के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं उन पर के अनेक नाम व संस्कृत मूलक और न द्रविड़ भाषाओं से उनका कोई संबंध है। भप मैन मजूप मपोजय मपै मगजस मगज मगोजव गोजर मसप मपक पच मगच गजव जामक जम्पै और पै सदृश जो नाम मालव सिक्कों पर विद्यमान है वे किसी ऐसी भाषा के हैं जो भारत की संस्कृत आदि भाषाओं से सरलता भिन्न थी। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि संज्ञावाचक इन शब्दों में द्वंद्वों का भी प्रयोग किया गया है जो ऑस्ट्रिक भाषाओं की एक अनुपम विशेषता है। पै मै पै ज म पै और गजव म गजव के द्वंद इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि मालव या मालय लोगों की प्राचीन भाषा का ऑस्ट्रिक भाषा परिवारों के साथ संबंध था। भारत की ये मालय लोग ही स्वर्ण भूमि में जाकर आबाद हुए थे। सुमात्रा की कतिपय मालय जातियों में यह अनुश्रुति भी पाई जाती है कि उनके पूर्वज भारत से आकर यहाँ बसे हैं। यहाँ हमने उन युक्तियों का अत्यंत संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया है जिन द्वारा यह प्रतिपादित किया जाता है कि पहली दूसरी सदियों से भी बहुत पहले भारत की प्राचीनतम आदि निवासी जातियों ने जिनमें मालय या मालव जाति प्रमुख थी दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों व द्वीपों को आबाद किया था। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह मत किसी ठोस आधार पर आश्रित नहीं है। मालव गण के लोग को यदि आर्य व द्रविड़ न मानकर मुंडा संथाल और खासी लोगों के वर्ग का माना जाए तभी इस युक्ति परंपरा में कोई बल नहीं हो सकता है। पर मालव गण की स्थिति पहले पंजाब में थी और बाद में उसने राजस्थान की मरुभूमि में प्रवेश किया। जातीय दृष्टि से मालव लोग अपनी पड़ोसी सिवी शूद्रक क्षत्रिय कठ मद्रक आदि गणों के निवासियों से भिन्न थे। यह स्वीकार कर सकना सुगम नहीं है यदि यह माना जाए कि इन सब गणों के लोगों भी ऑस्टिक वर्ग के ही थे तो यह भी संगत नहीं होगा। इस दशा में मालय मालव जाति द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया को आबाद करने की बात को अभी तक ऐसा तथ्य नहीं समझ लेना चाहिए जिसके संबंध में मतभेद की कोई गुंजाइश न हो। मुंडारी खासी आदि भाषाएं बोलने वाले भारत के लोग अब तक भी सभ्यता में बहुत पिछड़े हुए हैं। पर जिन मालवों ने सिकंदर के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया था वे पंजाब के अन्य गणराज्यों के लोगों का सामना ही समान ही सभ्य तथा उन्नत थे। संभवतः वे आर्य जाति के ही थे और उनका मुंडा आदि जातियों से कोई संबंध नहीं था। स्मिडट और सिल्वा लेवी सदृश विद्वानों ने जिस मत का प्रतिपादन किया है उसकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती पर उस पर और अधिक विचार किया जाना चाहिए।